दिन भर तारीख 14 दिसंबर दिन सोमवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। राहुल गांधी का आरएसएस पर निशाना लगाया, मंदिर में न जाने देने का आरोप।
वहाँ पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कौन होते हैं मुझे मंदिर से रोकने? Why? What do you mean why?
दिल्ली में झुग्गियों को हटाने पर सियासत हुई तेज और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसद में बयान, शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है पाकिस्तान से बातचीत। साथ ही कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां भी।
सिर्फ मैं ही बीबीसी हिंदी नहीं सुनता हूँ, मेरे गांव में और भी कुछ लोग हैं जो बीबीसी हिंदी बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी ईमेल या लेटर नहीं लिखा है, इन्होंने उनके नाम लिख के भेजे हैं।
होंगी खबरें खेल की और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके असम दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक मंदिर में जाने से रोक दिया था। राहुल ने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं की मदद से उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया। राहुल के मुताबिक आरएसएस कार्यकर्ताओं के वहां से चले जाने के बाद शाम को ही वो मंदिर जा सके थे। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल ने प्रवासी मामलों पर अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा है कि इससे मानवीय त्रासदी टल गई है। अपनी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेर्कल ने कहा कि सितंबर में जर्मनी ने कहीं भी दर्ज नहीं किए गए अप्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं खोलकर अपनी मानवीय और यूरोपीय जिम्मेदारी पूरी की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि जर्मनी आ रहे प्रवासियों की संख्या में कटौती की जाएगी। अंगेला मेर्कल ने कहा,
Wir haben ganz deutlich gemacht, wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung. Wir sind ein Rechtsstaat.
हमने यह स्पष्ट किया है कि हम अपनी मानवीय जिम्मेदारियों के साथ खड़े हैं। हम एक संवैधानिक राष्ट्र हैं और जो भी हमारे पास आएगा उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो शरणार्थी का दर्जा लेने के योग्य होंगे या शरण लेना चाहेंगे या जिन्हें सहारे के लिए सुरक्षा चाहिए, उन्हें ये चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन जब किसी के पास जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं होगा, तब भी कानून अपना काम करेगा। ये थे जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल के शब्द। रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार के जिम्मेदार लोगों पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने 6 अभियुक्तों की अर्जियां रद्द कर दी हैं। मानवता के खिलाफ अपराध के दोषी करार दिए गए इन लोगों में रवांडा के एक पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। सभी 6 को दोषी पाया गया है, लेकिन 3 की सजा को आजीवन कारावास से कम करके 47 साल कर दिया गया है। तंजानिया के अरुशा शहर में संयुक्त राष्ट्र ने इस अदालत का गठन किया था। ये अदालत रवांडा नरसंहार के लिए 66 लोगों को दोषी करार दे चुकी है। एक इराकी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह ने रमादी में जवाबी हमले किए हैं। इराक के सरकारी सैन्य बल रमादी पर फिर से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्र के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने शहर के उत्तरी इलाकों में 5 आत्मघाती हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 20 सरकार समर्थित लड़ाके मारे गए हैं, जबकि एक अन्य झड़प में 15 सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमलों ने इस्लामिक स्टेट को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के नए वित्त मंत्री प्रवीण गोवर्धन ने अर्थव्यवस्था को फिर से स्थिर करने का भरोसा दिया है। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री को अचानक हटाए जाने के बाद से अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा से कार्यक्रम दिन भर। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम में बात सबसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने आज एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मंदिर में उन्हें नहीं जाने दिया। राहुल के मुताबिक ये घटना उनके हालिया असम दौरे की है और वो बारपेटा के मठ में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ महिलाओं ने उन्हें नहीं जाने दिया। राहुल ने इन महिलाओं को संघ की कार्यकर्ता बताया। इस मुद्दे पर कांग्रेसी सांसदों ने आज संसद में प्रदर्शन भी किया, लेकिन केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के बयान को बेतुका बताया है। उधर मंदिर के पुजारी भी इस पूरे घटनाक्रम से नाराज हैं। विनीत खरे की रिपोर्ट।
पत्रकारों के साथ बातचीत में राहुल गांधी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे और उन्होंने आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए।
मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। बरपेटा मंदिर में, बरपेटा 17 में मंदिर में क्या कह के रोका? वहां पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कौन होते मुझे मंदिर से रोकने? व्हाई? व्हाट यू मीन व्हाई? बिकॉज दे फेल्ट लाइक मंदिर के सामने महिलाओं को बैठा के मुझे अंदर जाने से रोका। ठीक है, शाम को मैं अपने आप चला गया। जब वो चले गए मैं चला गया। मगर बीजेपी की ये सोच है, केरला में चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूड करो, असम में मुझे मंदिर के अंदर मत जाने दो, पंजाब में दलितों को मारो, दैट इज नरेंद्र मोदी जी इज थिंकिंग एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ केरला, टू द पीपल ऑफ पंजाब, टू द पीपल ऑफ असम एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो तरीका है काम करने का, इनको बदलना पड़ेगा।
उधर मंदिर के एक पुजारी ने समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि उनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने केरल, पंजाब और असम के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आरोपों को बेतुका बताया है।
आरएसएस को क्या संबंध है मंदिर? आरएसएस मंदिर चरा जाए क्या? मंदिर चराना, मस्जिद चराना, नहीं तो गुरुद्वारा चराना, नहीं तो चर्च चराना, वहाँ धार्मिक संस्थाओं का काम होता है, उसके लिए अलग अलग बोर्ड होता है। देश भर में सभी मंदिर आरएसएस के अंदर में है, ऐसा ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ कहना, गलत प्रचार करना और लोगों को मिसलीड करने के लिए प्रयास करना, ये एक आदत बन गया।
पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने सरकार की तरफ कड़ा रुख किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने काम के तरीकों में बदलाव लाने को कहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को कांग्रेस सरकार की बदला लेने की कार्रवाई बताती रही है। संसद के बाहर के माहौल का संसद के भीतर के कामकाज पर असर पड़ना लाजमी है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
असम में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है और तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हैं। जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी वहां एक पदयात्रा के सिलसिले में गए थे। मैंने बात की गुवाहाटी में स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा से और राहुल गांधी के बारपेटा दौरे के महत्व के बारे में जानना चाहा और साथ ही ये भी जानना चाहा कि बारपेटा मठ का क्या कुछ महत्व है।
देखिए, ये जो असम में इन मठों को सत्र कहते हैं और जो बरपेटा जो सत्र है, इसकी स्थापना श्री श्री माधव देव जी ने की थी। 500 साल पुराना है ये और धार्मिक भावनाओं से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। शंकरदेव, संत शंकरदेव, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले संत शंकरदेव और माधव देव ने असम में सत्रों की स्थापना की थी और इसके बाद अब तक 926 सत्र पूरे राज्य में है। और चूंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं तो शनिवार को राहुल गांधी जी का दौरा था बरपेटा में और बाद में एक बयान यहाँ के मुख्यमंत्री का आया कि भाई सत्र में राहुल गांधी प्रवेश करना चाह रहे थे लेकिन सत्र का जो गेट है उस गेट की सीढ़ियों पर नीचे जो पेड़ी हम कहते हैं उन पेड़ियों पर कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया कि भाई वो जो महिलाएं थी वो भाजपा की समर्थक थी, आरएसएस द्वारा इन्फ्लुएंस की गई थी और वो राहुल गांधी का विरोध करना चाहती थी।
जी, मंदिर प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है? जिस तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनको रोका गया, क्या वाकई ऐसा हुआ? मंदिर का क्या कहना है इस बारे
देखिए,
में
देखिए, ये सत्र को जो चलाते हैं, जो सत्र के प्रमुख होते हैं, उन्हें जो हेड प्रीस्ट जो होते हैं उन्हें सत्राधिकार कहते हैं और सत्राधिकार जो वहाँ के जो सत्राधिकार हैं उन्होंने मीडिया के एक वर्ग से बात की है, जो रिपोर्टें आज आई हुई हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री से इस तरह की कोई बात नहीं की थी कि वहाँ आरएसएस की महिलाएं रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि भाई उनके इंटेलिजेंस से पता चला था, एक दिन पहले ही पता चल गया था राहुल के दौरे से कि वहाँ कुछ महिलाएं इस तरह का विरोध करेगी और एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी और सत्राधिकार ने भी उन्हें इस बारे में जानकारी दी है। तो सत्राधिकार काफी नाराज हो गए और उन्होंने आज प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसी कोई बात नहीं की और इसलिए वो इस तरह की राजनीति से काफी खफा है और उन्होंने राहुल गांधी को और मुख्यमंत्री को कहा है कि वो इस सत्र को लेकर राजनीति ना करें और इस तरह के बयान के लिए माफी मांगे।
जी, क्या आपको लगता है कि जो राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव है इस पूरे विवाद का उससे कुछ लेना देना है?
देखिए, अभी चुनाव में महज 4-5 महीनों का समय बचा है और अब क्या है कि असम में जो भी कांग्रेस लगातार 3 बार यहाँ सत्ता में रही है, भाजपा यहाँ मजबूती से उभर रही है तो दोनों में बिल्कुल आमने सामने का टकराव सामने आ रहा है। ये दोनों का आपस में कोई भी छोटी छोटी बातों को ये राजनीतिक नजरिए से देखते हैं और उसको मुद्दा बनाते हैं। तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये इस तरह की राजनीति क्यों, आप कई मुद्दे हैं यहाँ, कई चीजें हैं असम में, आप जानते हैं उग्रवाद प्रभावित असम में कई तरह की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बांग्लादेश घुसपैठियों की यहाँ प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी की यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह के मंदिर मठों को लेकर क्यों राजनीति कर रहे हैं, लोग अब इस तरह की चर्चा कर रहे हैं।
ये थे गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
और इधर दिल्ली में शनिवार को रेल की पटरियों के पास से 500 अवैध झुग्गियों को हटाने के मुद्दे पर सियासत जारी है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव में अब कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शकूर बस्ती इलाके में गए जहां से ये झुग्गियां हटाई गई थी। साथ ही संसद में भी आज इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। इस पर हमारे साथी जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
कब तक ये टेंट में पड़े रहे हैं? केजरीवाल दो चार टेंट लगा दिया है और उसमें जो है खाना पीना भी ठीक ढंग से नहीं मिल रहा सर, हम लोग कैसे रहेंगे ये आप बता दीजिए।
करेंगे करेंगे, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हमारी सरकार नहीं है, केजरीवाल जी और मोदी जी की सरकार है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे।
शकूर बस्ती में झोपड़पट्टियों को गिराए जाने के बाद बेघर हुए एक भावुक व्यक्ति की कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से इंसाफ की मांग। राहुल गांधी उसे और बस्ती वालों से वादा करते हैं कि उनसे जो भी हो सकेगा वो करेंगे। शनिवार को रेलवे विभाग वालों ने रेलवे की जमीन से 500 झुग्गियां हटाई थी जिसके कारण उसमें रहने वाले कई लोग बेघर हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती का दौरा किया और उनके लिए कंबल और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम करवाया, लेकिन राहुल गांधी के दौरे पर बेघर लोग फिर से भावुक हो गए। राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब वो झुग्गियां तोड़ने नहीं देंगे।
जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को आप बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। ठीक है, एक नहीं तोड़ने दूंगा, अब मैं आपकी मदद करूंगा, संसद में उठाऊंगा, आप घबराओ मत।
झोपड़पट्टियों को हटाने पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने जब इसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार को ठहराया तो अरविंद केजरीवाल भड़क उठे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी अभी बच्चे हैं, उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर आती है, दिल्ली सरकार के नहीं। हाल तक दिल्ली की कच्ची बस्तियों में कांग्रेस को समर्थन हासिल था, लेकिन अब झोपड़पट्टी वाले आम आदमी पार्टी के काफी करीब चले गए हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पारंपरिक वोटरों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था जिसके कारण पार्टी को 70 में से 67 सीटें हासिल हुई थीं। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि दोनों पार्टियां झोपड़पट्टी पर सियासत कर रही हैं। इस मुद्दे को दोनों पार्टियों ने संसद तक भी पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने संसद में बोलते हुए कहा,
मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी यहां बैठे हैं वो इस पर बयान दें क्योंकि ये जो वादा किया गया था, मैडम एक मिनट, जो वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, जो मकान बने नहीं, झुग्गियां तोड़नी शुरू हो गई, ये गरीबों पर अत्याचार है, इसके मामले में रेलवे मंत्रालय से मैं जवाब चाहूंगा मैडम।
इस पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु का जवाब ये था,
डिस्पाइट रिपीटेड नोटिसेस एंक्रोचर्स डिड नॉट टेक द लैंड एंड।
सुरेश प्रभु कह रहे थे कि कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी झोपड़पट्टी वालों ने अपने घर खाली नहीं किए, पुलिस का सही प्रबंध न होने के कारण कार्रवाई देर से शुरू हुई और 12 दिसंबर को पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दे दी तो 10:50 पर कार्रवाई शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कुछ अफसरों को निलंबित कर दिया है और उन्होंने इसकी तह तक पहुँचने के लिए एक मैजिस्ट्रेट द्वारा इसकी छानबीन के ऑर्डर दिए हैं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
हाल में पाकिस्तान दौरे से लौटी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात की और ये भी बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस मौके पर यह भी ऐलान हुआ कि दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता बहाल होगी। इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष ने विचित्र करार दिया है। सुनिए हमारे साथी अमर शर्मा की रिपोर्ट।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी हालिया पाकिस्तान यात्रा को लेकर संसद में बयान देने पहुंची, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन से भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही में काफी दिक्कतें हुई और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे का ब्यौरा अनसुना रह गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों को पूरे क्षेत्र की शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बन गई दूरी को पाटना जरूरी है। बाद में उन्होंने लोकसभा में भी इस मुद्दे पर बयान दिया।
पाकिस्तान के साथ इस नवीन वार्ता के दो उद्देश्य हैं। पहला, चिंता के विषयों पर रचनात्मक बातचीत के जरिए समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही सहयोगात्मक संबंधों को स्थापित करना तथा इस दिशा में नए मार्ग तलाशना। व्यापार और संपर्क द्वारा, लोगों के बीच आपसी संपर्क द्वारा और मानवीय पक्षों पर नई पहलों के द्वारा समूचे क्षेत्र का कल्याण हो सकता है और इससे आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ सकता है।
सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान 9 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ बातचीत को दोबारा शुरू करने की बात की, जो 2008 के बाद से रुकी हुई थी। बातचीत में सीमा सुरक्षा, शांति और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को शामिल करने पर सहमति बनी है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शकील अहमद मोदी सरकार के इस कदम को विचित्र करार देते हैं।
एक विचित्र नीति पर मोदी सरकार काम कर रही है। जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, देश एक मत था कि जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा से आतंकवादी गतिविधियों को कम नहीं करेगा या खत्म नहीं करेगा, तब तक हम उससे कोई वार्ता नहीं करेंगे। मोदी जी की इस 1.5 वर्षों की सरकार में 924 बार से ज्यादा दफा इस बार वायलेशन हो चुका। हमारे कमीशन ऑफिसर, हमारे नॉन कमीशन ऑफिसर आतंकवादी गतिविधियों में मारे जा रहे हैं और अनप्रोवोक्ड फायरिंग में मारे गए हैं। 40,000 लोग हमारे जिनका घर बॉर्डर पे है, वो पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड फायरिंग की वजह से अपना घर छोड़ के 2 बार प्लान कर चुके हैं।
उधर लोकसभा में सुषमा स्वराज के बयान के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने लोकसभा में कहा कि इतने महत्वपूर्ण मसले पर लोकसभा को एक हफ्ते तक अंधेरे में रखने के पीछे सरकार की क्या मंशा है।
द मिनिस्टर विजिटेड इस्लामाबाद ऑन 8th and 9th December. Why did it take her 5 days after that to come to Parliament? That too, she came to Lok Sabha after laying a statement in Rajya Sabha at 11 o'clock. Why has Lok Sabha been kept in the dark on such an important matter?
अगले महीने भारत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता शुरू होनी है। पाकिस्तान के साथ पिछले दिनों कई स्तर पर हुई बातचीत के संदर्भ में सुषमा स्वराज ने कहा कि यह कूटनीति का हिस्सा है, लेकिन कुछ भी गुपचुप नहीं हुआ है और वार्ता से ही रास्ता निकलेगा।
ये थी अमर शर्मा की रिपोर्ट। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, जल्द ही दिल्ली के निर्भया कांड की 3री बरसी आने वाली है। 16 दिसंबर 2012 को एक युवती के साथ चलती बस में जिस तरह से बर्बर बलात्कार किया गया, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया। इस मामले ने न सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू की, बल्कि एक नए कानून का रास्ता भी तैयार किया। लेकिन खुद निर्भय का परिवार इस मामले में निराश नजर आता है, खासकर जिस तरह इस मामले के एक नाबालिग दोषी को जल्द रिहाई मिलने वाली है। बीबीसी ने इस मौके पर निर्भय की माँ से खास बातचीत की है।
अगर एक मुजरिम को बचाना होता है तो पूरी कायनात लग जाती है कि उनको फांसी नहीं होना चाहिए, उनको सजा नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्ची रोड पे पड़ी रहती है, चिल्लाती है बचाने के लिए, तो कोई सुनता ही नहीं है, देख के मुंह मोड़ लेता है। तकलीफ होती है कि हम कहाँ जी रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी 100 साल पुराना कानून में हमारी सरकार, हमारा न्यायपालिका सब जी रहा है कि नहीं, कानून के अंदर में हमें सजा देना है, कानून में यही है। अब मुजरिम क्राइम करते वक्त न उम्र देखता है, न समय देखता है, न कि हम क्या कर रहे हैं। क्राइम के लिए कोई उम्र नहीं और सजा के लिए उम्र देखते हैं। तो मुझे अब निराशा हो रही है अपने कानून व्यवस्था से।
यह है निर्भय के मां, जिनके साथ पूरी बातचीत कल आप बीबीसी घटना चक्र कार्यक्रम में सुन पाएंगे। अभी आपने सिर्फ उसकी एक झलक सुनी है। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। चीन के सबसे मशहूर मानवाधिकार वकीलों में से एक फू चिचियांग पर चल रहे मुकदमे के दौरान बीजिंग के कोर्ट में आज हाथापाई देखने को मिली। फू चिचियांग पर आरोप है कि उन्होंने अपने बयानों और विचारों के जरिए जातीय नफरत फैलाई है। हालांकि आलोचक इसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बता रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
फू चीचियांग पर आरोप है कि उन्होंने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट लिखी। इस सिलसिले में उन पर जातीय नफरत फैलाने और लोगों को उकसाने के आरोप तय किए गए हैं, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि फू चीचियांग के खिलाफ मुकदमा वकीलों, सरकार विरोधियों और भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे लोगों के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। फू चीचियांग के वकील मो शाओपिंग ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी गलत बयानी कर रही है और चीन में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म होती जा रही है।
चीनी कानून के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी पर तभी पाबंदी लगाई जा सकती है जब उससे वास्तविक खतरा हो, मसलन उससे हिंसा भड़कती हो, वो समाज के लिए खतरा हो या इस तरह का फिर कोई और मामला हो। परंतु सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर लिखे उनके साथ पोस्ट ऐसा कोई खतरा नहीं दर्शाते।
फू चीचियांग के वकील मो शाओपिंग के शब्द। चीनी पुलिस पर आरोप है कि उसने विदेशी पत्रकारों और राजनयिकों के साथ साथ कई प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें कोर्ट के बाहर से हटा दिया और पुलिस ने इस केस की कवरेज नहीं करने दी। पुलिस का बचाव करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लाई ने कहा,
इस मुकदमे को चीन की कानूनी संस्थाओं ने कानून के मुताबिक सुना। कानून लागू करने वाले प्राधिकरण ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए। इस मुद्दे से जुड़े लोगों को सहयोग करना चाहिए।
चीनी प्रवक्ता होंग लाई के शब्द। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में चीनी सरकार की आलोचना सही नहीं है। वहीं मानव अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूर्वी एशिया के निदेशक रॉजसन राइफ ने कहा है कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने फू चीचियांग के बारे में कहा,
He is very well known for taking on sensitive cases. He's represented clients involved with the
वो मुश्किल और संवेदनशील केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं, जैसे मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े मामले। वो कानून का पालन करते हैं और जब उन पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है तो इससे साफ दिखाई देता है कि विरोधी आवाजों को दबाया जा रहा है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूर्वी एशिया के निदेशक रॉजसन राइफ के शब्द। वहीं चीन में विदेश संवाददाताओं के क्लब ने आज मुकदमे के दौरान पत्रकारों के साथ हुई धक्का मुक्की की कड़ी आलोचना की है।
बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार आपको सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। और इसके बाद अब बारी आपकी चिट्ठियों की।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
तो स्वाति जी, चिट्ठियां आपके पास बहुत
जी
सारी
हाँ,
हैं,
काफी लेकिन, सारी हैं। मैं कोशिश करूंगी सब पढ़ लूं आज
जी।
पहली चिट्ठी जो मैं उठा रही हूँ वो है आचार्य आर एस वर्मा की, रायबरेली यूपी से इन्होंने चिट्ठी लिखी है।
क्या लिखते हैं?
और ये कह रहे हैं कि 1965 से ये लगातार बीबीसी सुन रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें एक बार इंग्लैंड जाने का मौका मिला था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 1993 में, तब ये बीबीसी जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए किसी वजह से, और वो इनका सपना जो है पूरा नहीं हो पाया।
अरे सपना पूरा कैसे, हम सपना पूरा कर सकते हैं। आप बीबीसी आपके ज्यादा करीब आ गई है, यानी हम लोग अब दिल्ली में हैं, तो अगर कभी आपका दिल्ली आना हो तो दिल्ली हमारे दफ्तर जरूर आइए, हमें आपसे मुलाकात करने में बहुत खुशी होगी।
ये पोस्टकार्ड हमें मिला है, हालांकि राइटिंग मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है।
लाइए मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है इनकी लेख। इन्होंने अपना नाम लिखा है अरबाब खान, गाँव कराड़ा, पोस्ट स्वामी जी निठानी, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर, राजस्थान।
आगे ये कहते हैं कि इनको कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 5-6 पत्र भेजे हैं लेकिन एक भी पत्र पढ़ा नहीं गया है, इसलिए मैं खासतौर से आज इनका पत्र पढ़ना चाहती थी, हालांकि राइटिंग की वजह से हो सकता है कि पहले
हाँ,
ना पढ़ा गया हो।
बिल्कुल, हमारे तमाम श्रोताओं से हमारी गुजारिश है कि जब हमें चिट्ठी लिखें तो साफ साफ शब्दों में, अक्षरों में अपनी बात लिखें ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, और ऐसा ना हो कि बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं, एक चिट्ठी समझ में नहीं आ रही है तो अच्छा छोड़िए दूसरी चिट्ठी लेते हैं, ऐसा होता है कई बार। तो उससे बचने के लिए स्पष्ट शब्दों में अपना नाम, गांव का पता और जो कुछ आपको कहना है कार्यक्रम के बारे में वो साफ साफ लिखिए।
भवेश मरोलिया का पोस्ट कार्ड है, इन्होंने राजस्थान से ये पोस्ट कार्ड भेजा है और ये कह रहे हैं कि विलियम जोन्स के बारे में जो मोहनलाल शर्मा ने प्रस्तुतिकरण किया, फैला उजियारा
की बात कर रहे हैं,
उसकी बात कर रहे हैं, उसके संगीत की तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं उसकी धुन अच्छी लगती है। और ये कह रहे हैं राजेश जी कि अगर नववर्ष पर अंतिम दिन में जो आप कार्यक्रम पेश करते हैं उसमें अगर आप श्रोताओं से बात करें तो इनसे जरूर संपर्क करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने चिट्ठी लिखी। और वर्षांत कार्यक्रमों की जो तैयारी होती है उसमें आजकल हम लोग शामिल हैं, उसी में हम जुटे हुए हैं। तो अगर ऐसा कार्यक्रम बना श्रोताओं से बातचीत का तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी संपर्क हो।
ईमेल्स का वक्त है, अब मैं पढ़ देती हूँ। आसिफ करीम का ईमेल है मौलानगर बिहार से, कहते हैं कि नमस्कार, भारत में दिलीप कुमार पर अशोक कुमार की रिपोर्ट उनको पसंद आई। वसतुल्लाह खान की डायरी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि काश ज्ञान विज्ञान दोबारा शुरू होता।
अच्छा, तो बहुत ही इन्होंने दो या तीन पंक्तियों में अपनी चिट्ठी समाप्त कर दी है। जी हाँ, क्या नाम बताया आपने इनका?
इनका नाम आसिफ करीम।
आसिफ करीम साहब, आपको वसतुल्लाह खान की डायरी पसंद आई। अशोक कुमार ने जो दिलीप कुमार साहब यानी यूसुफ खान साहब पर आज ही सुबह प्रोग्राम किया वो आपको पसंद आया, और आपका जो सुझाव है ज्ञान विज्ञान उसके बारे में हमें और भी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं कई बार। ज्ञान विज्ञान के बारे में लोग कहते हैं और हमसे पूछिए, एक वो कार्यक्रम है जिसको श्रोता चाहते हैं कि दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन आप देखिए ना, बहुत सारी नई चीजें हमने शुरू की हैं, विवेचना शुरू की है, दुनिया जहान शुरू हुआ है, चिट्ठियां हुई हैं, फैला उजियारा जैसे कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर संभव हुआ तो दूसरे कार्यक्रम भी शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा साहब। तो
अनुराग तिवारी का अगला ईमेल मैं ले लेती हूँ। राजेश जी कह रहे हैं कि उदय प्रकाश जी का साक्षात्कार सुना जिसमें उन्होंने अपना पक्ष भलीभांति रखा और उनके विचार सुनकर अच्छा लगा कि हमारा बुद्धिजीवी समाज अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो कि समाज को चेताए रखने की है वो भूला नहीं है। और ये भी वसतुल्लाह खां की डायरी की तारीफ कर रहे हैं, बेहद प्रशंसनीय है कहते हैं, लेकिन शिकायत इनकी तकनीकी खामी की वजह से आपकी मोबाइल वेबसाइट पर आपके कई बुलेटिन पूरे डाउनलोड नहीं होते हैं या ये उन्हें पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, केवल 20 मिनट तक ही कार्यक्रम प्ले हो पाता है। ऐसा ये कह रहे हैं कि आप आशा है इस ओर ध्यान देंगे।
अनुराग तिवारी साहब, आपने चिट्ठी लिखकर इन समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनसे वाकिफ नहीं हैं। हमें मालूम है कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं, खराबियां हैं, जिनकी वजह से हमारे श्रोता पूरे कार्यक्रम नहीं कभी कभी सुन पाते हैं। उस तरफ हमारा ध्यान है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको दुरुस्त किया जाए। रही बात उदय प्रकाश जी के इंटरव्यू की, तो ये हमारा काम है कि समाज में जिस तरह की हलचल हो रही हो उसको हम एक बिल्कुल दर्पण की भांति प्रतिबिंबित करें और आप तक पहुँचाएं।
और एक ईमेल साजिद खान का है सिवान बिहार से, लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही बीबीसी हिंदी नहीं सुनता हूँ, मेरे गांव में और भी कुछ लोग हैं जो बीबीसी हिंदी बहुत दिनों से सुन रहे हैं लेकिन उन लोगों ने कभी ईमेल या लेटर नहीं लिखा है। इन्होंने उनके नाम लिख के भेजे हैं,
बिल्कुल पढ़ दीजिए।
अनीश खान, अजमेरी खान, मोइन खान, लदन खान और साजिद खान,
ये सभी खान बंधुओं को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से कि आप बीबीसी के कार्यक्रम सुनते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर आपका नाम हम भले ही नहीं जानते हों लेकिन हमें एहसास है कि सिवान, सीतामढ़ी, बिहार के दूसरे ज़िले, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर महाराष्ट्र, हमारे श्रोता बिखरे हुए हैं। कुछ हमसे संवाद करते हैं, कुछ खामोशी से हमारे जो प्रसारण है उनको सुनते हैं। अभी मुझे लगता है कि अब
हमें पता भी बता देते हैं, ताकि श्रोताओं से चिट्ठी लिखें।
जी, अगर आप चिट्ठी लिखना चाहें तो लिखिएगा बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखें तो hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
ये थी आपकी चिट्ठियां और अब बात खेलों की। आदेश जी क्या कह रही है खेलों की दुनिया?
जी देखिए, खेलों की दुनिया में सबको इंतजार था कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज का कुछ ऐलान होगा या नहीं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है कोई खबर नहीं है और ऐसा लगता है कि ये सीरीज होना अब नामुमकिन है। उधर डुनेडिन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में आज मेज़बान न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 122 रन से मात दी। और कल का दिन बहुत बड़ा होगा क्योंकि सबकी नज़रें रहेंगी IPL 9 के लिए, जो दो नई टीमें हैं फ्रेंचाइजी वो किस तरह से भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, जिनके रहाणे सुरेश रैना, रामचंद्र अश्विन और उनके अलावा बहुत सारे खिलाड़ियों को किस तरह से चुनती हैं, किसके खाते में खिलाड़ी जाते हैं। वैसे कल 10 खिलाड़ियों के दाम का फैसला होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया खेलों की इस जानकारी के लिए। अगले कार्यक्रम में खेलों के विस्तार से बात करेंगे। और अब मुख्य समाचार।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि असम दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक मंदिर जाने में से रोक दिया था। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेयर्कल ने प्रवासी मामलों पर अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा है कि इससे मानवीय त्रासदी टल गई है। रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने 1994 में हुए नरसंहार के जिम्मेदार लोगों पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। एक इराकी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह ने रमादी में जवाबी हमले में 35 इराकी लड़ाकों और सैनिकों की मौत हुई है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। ठीक डेढ़ घंटे बाद आपसे अगली मुलाकात होने वाली है। कार्यक्रम होगा घटना चक्र। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक भाटिया। अशोक कुमार को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।